नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन, नई दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपना पर्चा भरेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर 57.06% हुआ मतदान। और पश्चिमी परिसंचरण का प्रभाव कम होने से राज्य के अधिकतर भागों में वर्षा में कमी, अगले 4 दिनों तक तापमान में होगी वृद्धि, 17 मई से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। अब समाचार विस्तार से। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का कल देर शाम नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उन्होंने नई दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले 9 अप्रैल से एम्स में भर्ती थे। वे यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में 3 अप्रैल को सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी थी। इसके बाद वे 9 अप्रैल को एम्स में भर्ती हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा है, जिसके सुबह 11 बजे तक पटना पहुंचने की संभावना है। इसे अंतिम दर्शन के लिए पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रखा जाएगा। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशील मोदी 3 बार विधायक रहे थे, जबकि भागलपुर से 1 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 2005 में वे एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। लगभग 11 वर्षों तक वे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। 2020 में पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और उनका कार्यकाल इसी साल अप्रैल में समाप्त हुआ था। सुशील कुमार मोदी 1974 के छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे, साथ ही पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव भी रह चुके थे। वे पहली बार 1990 में पटना मध्य से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 1996 में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे। वे लगभग 34 वर्षों तक लगातार संसद और विधानमंडल के सदस्य रहे। सुशील मोदी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि बिहार में भाजपा के उत्थान और सफलता के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार ने एक महान राजनीतिज्ञ को हमेशा के लिए खो दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सुशील मोदी का पूरा जीवन बिहार के लिए समर्पित था और उनके प्रयास राज्य को विकास के पथ पर ले जाने में काफी मददगार रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शोक संवेदना में कहा है कि मैंने सच्चा दोस्त और कर्मठ नेता खो दिया है। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन समारोह में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तथा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी शामिल होंगे। इधर पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत आज नामांकन करेंगे। इससे पूर्व कल पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती, सासाराम संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के मनोज कुमार और बहुजन समाज पार्टी के संतोष कुमार ने नामांकन पत्र भरा। बक्सर से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस चरण के लिए 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 17 मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 1 जून को होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में देश भर में 67.71% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इधर चौथे चरण में राज्य की 5 संसदीय सीटों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में 57.06% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ताजा जानकारी के अनुसार बेगूसराय में 58.14% मतदान हुआ, दरभंगा में 56.60, मुंगेर में 53.92, समस्तीपुर में 58.32 और उजियारपुर में 58.51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां कभी भी लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि वे अगली पीढ़ी के लिए संपत्ति जुटाने में व्यस्त हैं।
आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले, वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं। उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आप लोग यहाँ एक कहावत कहते हैं ना, ना निमन गीतिया गाइब ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देने की साजिश कर रहा है, जिसे भाजपा कभी सफल नहीं होने देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात महाराजगंज लोकसभा सीट की। महाराजगंज बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र वर्ष 1957 में अस्तित्व में आया था। पूर्व प्रधानमंत्री और महान समाजसेवी नेता चंद्रशेखर भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जीत मिलती रही है। पार्टी ने एक बार फिर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस ने आकाश कुमार सिंह को टिकट दिया है। आकाश कुमार सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। इस बार के चुनाव में कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। विधानसभा वार शक्ति संतुलन देखे तो 6 से 4 सीटों पर विपक्षी गठबंधन के घटक दलों का कब्जा है और 2 सीट पर भाजपा के विधायक हैं। इकमौर बनिया सीट पर राजद, महाराजगंज पर कांग्रेस और मांझी सीट पर CPM के विधायक हैं, जबकि गोरिया, कोठी और तरैया विधानसभा सीट भाजपा के कब्जे में है। कृषि प्रधान महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में उद्योग धंधों का घोर अभाव है, जिस कारण रोजगार के लिए पलायन क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को एक प्रमुख मांग महाराजगंज को जिले का दर्जा देने की रही है। भाजपा उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पिछले 10 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्य और मोदी की गारंटी के नाम पर लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को साथ साथ पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। यह देखना काफी रोचक होगा कि क्षेत्र के लगभग 18 लाख मतदाता भाजपा प्रत्याशी को लगातार तीसरी बार सांसद बना भेजते हैं या फिर एक नए चेहरे कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह पर भरोसा जताते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए महाराजगंज से पवन कुमार सिंह।
वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। चक्रवातीय परिसंचरण का प्रभाव कम होने के कारण राज्य के अधिकतर भागों में मौसम में बदलाव हुआ है। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहा। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वैशाली, सीवान, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चार दिनों तक राज्य के ज्यादातर भागों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। विभाग ने कहा है कि 17 मई से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिससे प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां फिर से बनेंगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूल 16 मई से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि यह समय सारणी 30 जून तक प्रभावी रहेगी। विशेष कक्षाओं के दौरान छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन 10 से 10:30 बजे के बीच दिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों का जीवन आसान बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों का ऑटो मोड से निपटान शुरू कर दिया है। ईपीएफओ के ऑटो क्लेम सॉल्यूशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दावों का निपटान किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से बंद सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के जल्द शुरू होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए ई ऑक्शन आमंत्रित किए गए हैं। इसकी रिजर्व प्राइस 91 करोड़ रुपए रखी गई है। ई ऑक्शन 27 मई को किया जाएगा। जमुई पुलिस ने अंतर जिला लूट गिरोह के 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 3 पिस्तौल, 6 कारतूस और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, बिहार की सियासत के युग पुरुष सुशील मोदी नहीं रहे। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के हवाले से लिखा है, जमाबंदी कानून से संबंधित पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बेटियां इस बार भी बेहतर लेकिन पासिंग परसेंटेज पिछले साल से कम। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, एनडीए होगा 400 पार, पाक को पहना देंगे चूड़ियां। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन, नई दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपना पर्चा भरेंगे। लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर 57.06% हुआ मतदान। और पश्चिमी परिसंचरण का प्रभाव कम होने से राज्य के अधिकतर भागों में वर्षा में कमी। अगले 4 दिनों तक तापमान में होगी वृद्धि। 17 मई से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।